एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। इस ज्ञान गोष्ठी में हम जटिल विषयों और जरूरी किताबों को आपके लिए आसान बनाते हैं। कोशिश रहती है कि कम समय में आपको अच्छी गहरी जानकारी मिले।
बिल्कुल।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हुनर मतलब स्किल और एक्सपर्टीज के बारे में हमारी जो सोच है ना उसे शायद पूरी तरह बदल दे।
हाँ, बिल्कुल सही कहा। किताब है एंडर्स एरिक्सन और रॉबर्ट पूल की पीक, सीक्रेट्स फ्रॉम द न्यू साइंस ऑफ एक्सपर्टीज।
और अच्छी बात यह है कि इसका गुजराती अनुवाद भी है, सर्वोच्च कौशल्य विशेषज्ञतानु विज्ञान।
अच्छा,
तो ये किताब मूल सवाल ये पूछती है कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो संगीत हो, खेल हो, पढ़ाई या कोई भी प्रोफेशन, उसमें टॉप पर पहुंचने का मतलब वो असाधारण परफॉर्मेंस का राज क्या है।
और ये सवाल आज कितना जरूरी है ना, हर तरफ एक होड़ सी है, बेहतर करो और बेहतर करो। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि क्या मुझ में वो बात है, क्या मैं सच में कुछ कमाल कर सकती हूँ,
या फिर बस कुछ लोग लकी होते हैं, है ना, जिन्हें वो टैलेंट मिल जाता है।
हाँ, वही तो। ये किताब इन्हीं सवालों से टकराती है और जो जवाब देती है वो थोड़ा चौंकाने वाला भी है।
बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि ये जो महानता है या एक्सपर्ट लेवल का परफॉर्मेंस है, ये कोई पैदाइशी चीज नहीं है, गिफ्ट नहीं है।
अच्छा।
हाँ, इसे कमाना पड़ता है, इसे बनाना पड़ता है, एक खास तरह की फोकस मेहनत से, जिसे वो कहते हैं डेलिबरेट प्रैक्टिस।
डेलिबरेट प्रैक्टिस, सोच समझ कर किया गया अभ्यास।
एग्जैक्टली। और ये बात सीधी टक्कर लेती है उस आम धारणा से कि भाई कुछ लोग तो बस पैदाइशी जीनियस होते हैं।
तो ये इतना बड़ा दावा करने वाले लेखक कौन है, जरा इनके बारे में जानते हैं।
मुख्य विचारक तो डॉक्टर के एंडर्स एरिक्सन थे। जी, डॉक्टर एरिक्सन वो स्वीडन के साइकोलॉजिस्ट थे और अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। उन्हें मतलब ह्यूमन परफॉर्मेंस और एक्सपर्टीज के साइकोलॉजी पर दुनिया के लीडिंग रिसर्चर्स में गिना जाता था। दुख की बात है कि वो अब हमारे बीच नहीं है, 2020 में उनका देहांत हो गया, पर उनका काम बहुत बहुत प्रभावशाली है।
उन्होंने 30 साल से ज्यादा, सोचिए 30 साल, इसी एक सवाल पर रिसर्च की कि लोग एक्सपर्ट कैसे बनते हैं, कैसे कोई किसी चीज में इतना माहिर हो जाता है।
हाँ, और वो जो मैल्कम ग्लैडवेल का फेमस 10,000 घंटे का नियम है ना,
हाँ हाँ सुना है।
वो असल में एरिक्सन की ही रिसर्च पे बेस्ड है। हालांकि एरिक्सन इस किताब में ये भी साफ करते हैं कि ये नियम उतना सीधा साधा नहीं है, सिर्फ 10,000 घंटे पूरे कर लेना काफी नहीं है।
अच्छा, मतलब सिर्फ घंटों की गिनती नहीं।
नहीं, उन घंटों में आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है, क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस।
ये इंटरेस्टिंग है।
और उनकी रिसर्च का तरीका भी देखिए, वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते थे, उन्होंने असल दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स को स्टडी किया।
जैसे
शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स,
हाँ,
दुनिया के बेस्ट वायलिन प्लेयर्स, मेमोरी चैंपियंस जिनकी याददाश्त गजब की होती है, ओलंपिक एथलीट्स, मतलब हर फील्ड के एक्सपर्ट्स। और उन्होंने लैब में भी नए नए तरीके निकाले ये समझने के लिए कि ये लोग सोचते कैसे हैं, काम करते वक्त इनका दिमाग कैसे चलता है।
कमाल है।
तो उन्होंने ये किताब क्यों लिखी फिर रॉबर्ट पूल के साथ मिलकर?
कहा उन्होंने ये किताब इसीलिए लिखी ताकि उनके इतने सालों की रिसर्च का जो निचोड़ है वो सिर्फ एकेडमिक सर्कल्स में ना रह जाए, आम लोगों तक पहुंचे,
बिल्कुल,
हम जैसे लोग समझ सकें।
और वो 10,000 घंटे वाले नियम की जो गलत फहमियां फैल गई थी उन्हें भी दूर करना चाहते थे।
बिल्कुल।
सच कहें तो इस विषय पर शायद उनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट था ही नहीं।
तो ठीक है, लेखक को जान लिया, अब आते हैं किताब पर। पीक, ये है क्या आखिर, मतलब एक लाइन में बताना हो तो।
एक लाइन में मुश्किल है, पर कोशिश करता हूँ। ये बेसिकली हुनर या स्किल सीखने के पीछे जो साइंस है उसकी एक बहुत गहरी पड़ताल है।
ओके।
ये दिखाती है कि कैसे कोई भी इंसान, हाँ कोई भी, लगभग किसी भी चीज में अपनी काबिलियत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है।
वाह, ये तो बड़ी उम्मीद जगाने वाली बात है।
है ना, ये टैलेंट वाली जो पुरानी सोच है ना कि या तो है या नहीं है, उसको ये किताब तोड़ती है और सबूतों के आधार पर बताती है कि इंसान की क्षमता, हमारी पोटेंशियल, हमारी सोच से कहीं ज्यादा है।
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारा दिमाग, हमारा शरीर, वो इतने लचीले हैं, इतने अडेप्टेबल हैं, जितना हम शायद मानते ही नहीं।
एग्जैक्टली। और सही तरीकों से, सही किस्म की मेहनत से हम वो लेवल हासिल कर सकते हैं जो अभी शायद हमें नामुमकिन सा लगता हो।
इसीलिए किताब सिर्फ स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल के लिए नहीं है, मुझे लगता है ये पेरेंट्स के लिए, टीचर्स, कोच, मतलब हर उस इंसान के लिए है जो खुद को या किसी और को बेहतर बनाना चाहता है।
बिल्कुल। अच्छा, किताब आगे कैसे बढ़ती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है?
हाँ, वो भी बड़ा लॉजिकल है। शुरुआत में ये टैलेंट मिथ को तोड़ती है, जैसे मोत्ज़ार्ट की कहानी का सच बताकर।
अच्छा, मोत्ज़ार्ट भी मिथ हैं?
हाँ, मतलब उनकी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी बताई जाती है। फिर किताब समझाती है पर्पसफुल प्रैक्टिस क्या होती है, मतलब उद्देश्य के साथ अभ्यास करना। और फिर आता है इसका सबसे अहम कॉन्सेप्ट, डेलिबरेट प्रैक्टिस, सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया अभ्यास। एरिक्सन इसे एक्सपर्टीज का गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं।
गोल्ड स्टैंडर्ड, ओके। और क्या है इसमें?
इसमें एक और बहुत ही जरूरी चीज है, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, मानसिक अभ्यावेदन। ये समझना थोड़ा मुश्किल है पर बहुत जरूरी है। ये वो मानसिक खाके या नक्शे होते हैं जो एक्सपर्ट्स को चीजों को अलग ढंग से देखने समझने में मदद करते हैं।
अच्छा, मतलब ये सिर्फ हाथ का हुनर नहीं, दिमाग का खेल ज्यादा है।
हाँ बिल्कुल। किताब ये भी बताती है कि इस तरह की प्रैक्टिस से हमारे दिमाग में असल में बदलाव आते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं, और हमारे शरीर में भी।
और आखिर में प्रैक्टिकल बातें भी होंगी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए।
हाँ हाँ बिल्कुल। आखिर में ये इन सारे सिद्धांतों को अपनी नौकरी में, अपनी पढ़ाई में या अपने शौक में कैसे इस्तेमाल करें, इसके तरीके भी बताती है।
बढ़िया, तो फिर अब थोड़ा और डीप चलें, कुछ मुख्य हिस्सों को और खोल कर समझें। शुरुआत करते हैं पर्पसफुल प्रैक्टिस से।
हाँ जरूर। किताब में कहानी है स्टीव फैलोन की। वो एक साधारण सा कॉलेज स्टूडेंट था। एरिक्सन और उनकी टीम ने उसे गाइड किया और सिर्फ ट्रेनिंग के दम पर उसने अपनी याददाश्त की क्षमता को, जहां हम आप मुश्किल से 7-8 अंक याद रख पाते, उसने उसे 82 अंकों तक बढ़ा लिया।
82, कमाल है।
है ना? ये कहानी बस ये दिखाती है कि सही ट्रेनिंग मिले तो हम अपनी जो मानी हुई लिमिट्स है उन्हें तोड़ सकते हैं।
तो ये पर्पसफुल प्रैक्टिस है क्या फिर? इसके क्या तत्व हैं?
इसके 4 मुख्य तत्व बताए हैं एरिक्सन ने। पहला, आपका लक्ष्य एकदम साफ और स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आज मुझे गाने का ये मुश्किल वाला अंतरा परफेक्ट करना है।
ओके, क्लियर गोल।
दूसरा, प्रैक्टिस करते समय पूरा फोकस चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, इंटेंस फोकस। तीसरा, आपको तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत और कहाँ गलती हो रही है।
फीडबैक जरूरी है।
और चौथा और शायद सबसे जरूरी, आपको लगातार अपने कंफर्ट जोन से, अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर कोशिश करनी होगी। वो करना होगा जो अभी आपसे ठीक से नहीं होता।
अच्छा, मतलब जो चीज आसानी से हो रही है उसे बार बार करने से सुधार नहीं होगा?
नहीं, सुधार तभी होगा जब आप थोड़ी मुश्किल चीज ट्राई करेंगे, जहां गलती होने का चांस हो, जहां आपको जोर लगाना पड़े।
ये बात ध्यान रखने वाली है। अच्छा, अगला बड़ा आइडिया था अडेप्टेबिलिटी का। हमारा शरीर और दिमाग बदलते हैं।
हाँ, और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बायोलॉजिकल सच है।
बिल्कुल, किताब में वो लंदन के टैक्सी ड्राइवरों वाला मशहूर उदाहरण है।
हाँ, सुना है उसके बारे में।
लंदन की गलियां इतनी ज्यादा हैं, इतनी कंफ्यूजिंग हैं, उनका पूरा नक्शा याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो जो कैबीज ये कर पाते हैं, उनके दिमाग का एक हिस्सा होता है हिपोकैम्पस,
जो याददाश्त और स्पेस से जुड़ा है।
हाँ वही, वो हिस्सा उन ड्राइवरों में औसत लोगों से काफी बड़ा पाया गया। मतलब दिमाग ने उस चुनौती के जवाब में खुद को बदल लिया।
वाह, ये तो सीधा सबूत है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, कि लगातार चुनौती देने से दिमाग वाकई बदलता है।
एग्जैक्टली। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसे आपने कहा था शायद सबसे गहरा विचार है, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। जरा इसे आसान भाषा में समझाएंगे, ये क्या चीज है?
हाँ, कोशिश करती हूँ। देखिए, एक एक्सपर्ट और एक नौसिखिए में सिर्फ ये फर्क नहीं होता कि एक्सपर्ट वो काम बेहतर तरीके से कर लेता है, असली फर्क होता है कि वो उस चीज के बारे में बेहतर तरीके से सोचता है।
अच्छा, सोचने में फर्क?
हाँ, एक्सपर्ट अपने दिमाग में उस चीज का एक बहुत डिटेल्ड, बहुत व्यवस्थित और काम का नक्शा, एक तरह का मेंटल मॉडल बना लेता है। इसे ही मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं।
कोई उदाहरण?
जैसे मान लीजिए शतरंज का खिलाड़ी, एक नौसिखिया सिर्फ अलग अलग मोहरों को देखता है, लेकिन एक ग्रैंड मास्टर क्या देखता है? वो मोहरों के बीच के रिश्ते, पूरे बोर्ड पर बन रहे पैटर्न, आगे की कई चालों की संभावनाएं, कहाँ खतरा है, कहाँ मौका है, ये सब एक साथ देख पाता है। उसके दिमाग में खेल का एक बहुत कॉम्प्लेक्स नक्शा बना हुआ है।
याद ऐसे एक अनुभवी डॉक्टर, वो मरीज के लक्षणों को सुनते ही शायद बीमारी के पैटर्न को पहचान लेता है, जो एक नए डॉक्टर को नहीं दिखता।
बिल्कुल, यह है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। एक अच्छा सर्जन ऑपरेशन से पहले पूरे प्रोसीजर को अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकता है, हर स्टेप, हर संभावित दिक्कत, ये सब उसके मेंटल रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिस का असली गोल सिर्फ एक्शन को सुधारना नहीं, बल्कि दिमाग में इन बेहतर नक्शों को बनाना है।
हाँ, एरिक्सन यही कहते हैं कि असली सुधार तब होता है जब आपके मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बेहतर और ज्यादा परिष्कृत होते जाते हैं।
ओके, ये तो बड़ी गहरी बात है, और यहीं पर शायद वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस आती है, गोल्ड स्टैंडर्ड वाली।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि डेलिब्रेट प्रैक्टिस को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो इन मेंटल रिप्रेजेंटेशंस को बनाने और सुधारने में सबसे ज्यादा मदद करे।
अच्छा, तो ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस पर्पसफुल प्रैक्टिस से अलग कैसे है? इसमें क्या खास है?
देखिए, पर्पसफुल प्रैक्टिस भी अच्छी है, पर डेलिब्रेट प्रैक्टिस उससे एक कदम आगे है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली, ये उन फील्ड्स में सबसे अच्छा काम करती है जहां पहले से स्थापित है कि सही तरीका क्या है और बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दिखती है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, चेस, मैथ, सर्जरी वगैरह।
ओके, जहां एक तयशुदा ढांचा हो।
हाँ, दूसरी, इसमें लक्ष्य बहुत ही छोटा और स्पेसिफिक होता है, जैसे सिर्फ फोरहैंड का एंगल सुधारना या कोर्ट के इस एक फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना। तीसरी, इसमें भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं, पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए।
ठीक है।
चौथी और सबसे जरूरी शर्त, आपको किसी एक्सपर्ट से, मतलब किसी अच्छे टीचर या कोच से तुरंत और सटीक फीडबैक मिलना चाहिए। वो बताए कि क्या गलत हो रहा है और उसे कैसे ठीक करना है।
अच्छा, कोच या गुरु का होना जरूरी है।
हाँ, डिलिबरेट प्रैक्टिस के लिए ये बहुत जरूरी माना गया है। और पांचवी चीज है, उस फीडबैक के आधार पर गलती सुधारना और फिर सही तरीके को बार बार दोहराना, रेपिटिशन विद करेक्शन।
सुनने में तो ये काफी इंटेंस लग रहा
है भी। और एरिक्सन एक और बात कहते हैं जो थोड़ी हैरान करती है, कि डिलिबरेट प्रैक्टिस अक्सर मजेदार नहीं होती।
है। मजेदार नहीं होती?
हाँ, बल्कि ये काफी मेहनत वाली, थकाने वाली और कभी कभी बोरिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसका मकसद मजा लेना नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुधार करना है।
अच्छा, जैसे वो टॉप वायलिन वादक, वो शायद पूरा गाना मजे के लिए बजाने की बजाय घंटों तक सिर्फ सबसे मुश्किल वाले 4-5 नोट्स को ही घिसते रहते होंगे।
बिल्कुल, वो ही डिलिबरेट प्रैक्टिस है, जब आप वो कर रहे हैं जो आपसे आसानी से नहीं होता और उसे बार बार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा हमने कहा, इसका बड़ा लक्ष्य अक्सर दिमाग में उन बेहतर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस को बनाना ही होता है।
लेकिन अब सवाल ही उठता है कि ये सब तो ठीक है जहां कोच हैं, तय तरीके हैं, पर हम अपनी नौकरी में या रोजमर्रा की जिंदगी में से कैसे करें? वहां तो अक्सर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता।
हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और किताब इसका भी जवाब देने की कोशिश करती है। कहती है कि जहां तयशुदा रास्ते नहीं है, वहां आपको खुद अपना कोच बनना पड़ेगा।
खुद का कोच कैसे?
पहली बात, सिर्फ सालों तक एक ही काम करते रहने से आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते। आपको एक सीखने वाली मानसिकता अपनानी होगी, अपने काम को ही प्रैक्टिस का मैदान बनाना होगा।
अच्छा, जैसे?
पहले तो पहचानिए कि आपके काम में सबसे जरूरी स्किल्स कौन सी हैं। मान लीजिए आप सेल्स में हैं और आपको प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, तो अगली बार जब प्रेजेंटेशन दे तो उसे सिर्फ एक काम की तरह ना देखें, उसे प्रैक्टिस की तरह देखें। शायद आप प्रेजेंटेशन से पहले उसे खुद रिकॉर्ड करें, फिर उसे सुने या देखें कि कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ आवाज ठीक नहीं थी, कहाँ आप ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाए।
सेल्फ फीडबैक।
हाँ, या फिर किसी भरोसेमंद कलीग से पूछें कि उन्हें क्या लगा, कहाँ सुधार हो सकता है। किताब में रेडियोलॉजिस्ट का उदाहरण है, वो पुराने केस की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, खुद अंदाज़ा लगाते हैं और फिर असल नतीजे से मिलाते हैं। ये भी एक तरह की डेलिब्रेट प्रैक्टिस है।
बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला उदाहरण भी कमाल का था। अपना लिखना सुधारने के लिए वो दूसरों के अच्छे लेखों को तोड़कर फिर से लिखते थे।
हाँ, वो एसेंस को पकड़ते थे, फिर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करते थे और फिर तुलना करते थे। ये दिखाता है कि आप बिना किसी बाहरी कोच के भी खुद के लिए प्रैक्टिस और फीडबैक का सिस्टम बना सकते हैं।
और यही चीज अपने शौक पे भी लागू हो सकती है। अगर गिटार सीख रहे हैं तो वो मुश्किल कॉर्ड जो बज नहीं रहा उसी को बार बार प्रैक्टिस करें। सिर्फ वो गाने ना बजाते रहें जो आपको पहले से आते हैं।
सही बात है। या टेनिस में सिर्फ मैच खेलने के बजाय आधा घंटा सिर्फ अपने बैकहैंड या सर्विस पर काम करें, मुश्किल हिस्सों पर फोकस करना।
ठीक है, तो ये हो गया डेलिब्रेट प्रैक्टिस का फंडा। अब वापस उस टैलेंट वाले मिथक पर आते हैं। किताब मोजार्ट और पोलगार बहनों का जिक्र करती है।
हाँ, किताब कहती है कि मोजार्ट जीनियस तो थे, पर उनकी कहानी को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उनकी शुरू की रचनाएं उतनी मौलिक नहीं थीं, और सबसे बड़ी बात, उनके पिता लियोपोल्ड, जो खुद एक बहुत काबिल संगीतकार और टीचर थे, उन्होंने मोजार्ट को बचपन से ही बहुत ज्यादा बहुत इंटेंस ट्रेनिंग दी थी।
मतलब माहौल और ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल था।
बिल्कुल। और पोलगार बहनों की कहानी तो और भी जबरदस्त है। उनके पिता लाज़लो पोलगार, उनका तो सिद्धांत ही यही था कि जीनियस बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटियों को शतरंज चैंपियन बनाएंगे, और उन्होंने बचपन से ही उन्हें उसी तरह पाला, पढ़ाया, ट्रेन किया। और नतीजा, तीनों बेटियां शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी। जुडित पोलगार तो इतिहास की सबसे महान महिला खिलाड़ी मानी जाती हैं।
वाह, ये तो कमाल का एक्सपेरिमेंट था और सफल भी रहा।
हाँ, ये सब कहानियां यही दिखाती हैं कि जल्दी शुरुआत, सही माहौल, एक्सपर्ट गाइडेंस और हजारों घंटों की डेलिबरेट प्रैक्टिस, ये है असली वजहें, कोई रहस्यमयी टैलेंट नहीं।
हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीजों में फिजिकल एडवांटेज हो, जैसे बास्केटबॉल में लंबाई, पर ज्यादातर स्किल्स के लिए, खासकर जो दिमागी हैं, उनमें जेनेटिक्स शायद उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना हम मानते हैं।
और ये जानना ही कितनी बड़ी बात है, ये आपको कंट्रोल देता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझमें तो टैलेंट ही नहीं है।
बिल्कुल। तो चलो अब इस पूरी चर्चा के जो मुख्य संदेश हैं, जो की टेक अवेज हैं, उन्हें एक बार समेट लेते हैं।
हाँ, करते। मेरे लिए पहली और सबसे बड़ी बात है ह्यूमन पोटेंशियल, हमारी क्षमता। ये फिक्स्ड नहीं है, ये लचीली है, ये बढ़ सकती है। हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं या कम से कम उन्हें आगे धकेल सकते हैं। ये सोच ही बहुत पावरफुल है।
सही। दूसरी बड़ी बात, ये जो जन्मजात प्रतिभा या गॉड गिफ्टेड टैलेंट का आइडिया है, ये ज्यादातर एक मिथक है। एक्सपर्ट्स बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। और ये ग्रोथ माइंडसेट वाली बात से जुड़ता है।
ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये मानना कि हम मेहनत और सही तरीकों से बेहतर बन सकते हैं।
हाँ, सोचिए हम अपने बच्चों की या टीम की तारीफ कैसे करते हैं। अगर हम तुम बहुत स्मार्ट हो की जगह कहें तुमने बहुत मेहनत की, या तुमने ये तरीका सोचा, ये बढ़िया था, तो उनकी सोच पर कितना असर पड़ेगा।
बिल्कुल। तीसरा पॉइंट फिर वही, डेलिबरेट प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। सिर्फ घंटों तक प्रैक्टिस करना काफी नहीं है, कैसे करते हैं वो मायने रखता है। फोकस्ड, एफर्टफुल और फीडबैक के साथ। हम अक्सर प्रैक्टिस के नाम पर सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं।
चौथा, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, ये बहुत जरूरी हैं। एक्सपर्टीज सिर्फ बेहतर करना नहीं है, बल्कि बेहतर सोचना और समझना है। वो जो हमारे यहाँ अनुभवी लोग होते हैं ना, जिन्हें देख के लगता है इन्हें सब पता है,
हाँ,
वो असल में सालों की प्रैक्टिस से बने बेहतर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस का ही नतीजा है।
पांचवा पॉइंट, ठहराव यानी प्लाटो। जब लगने लगे कि अब और सुधार नहीं हो रहा, किताब कहती कि इससे डरना नहीं है, इसे तोड़ना है, और तोड़ने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपनी कमजोरियों पर काम करना पड़ेगा।
आराम असल में तरक्की का दुश्मन है। हम सबने ये महसूस किया होगा, लगता है बस यहीं तक था, पर एरिक्सन कहते हैं ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं।
और छठा, अच्छे टीचर या कोच की वैल्यू। सही गाइडेंस, सही फीडबैक, ये सीखने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। अकेले डेलिबरेट प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो सकता है।
सही कहा। अच्छा, किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या कोट्स भी हैं जो याद रह जाते हैं?
हाँ, बिल्कुल है। जैसे एक जगह कहते हैं कि लोग अक्सर अपनी पूरी क्षमता तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो आराम के आदी हो जाते हैं, ना कि इसलिए कि उनमें क्षमता नहीं होती। वो बस वो जरूरी मेहनत करते ही नहीं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए चाहिए। ये बात छुपती है थोड़ी।
और एक और बात मुझे अच्छी लगी कि किसी भी रुकावट को पार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अलग एंगल से देखें। इसीलिए कोच या टीचर जरूरी हैं, वो आपको नया नजरिया दे सकते हैं। हम अक्सर एक ही तरीके से दीवार में सिर मारते रहते हैं।
सही। और ये भी कि सिर्फ दोहराते रहना काफी नहीं है, सुधार के लिए आपको खुद को फेल होते देखना होगा, अपनी गलतियों को बारीकी से देखना होगा और उनसे सीखना होगा। अपनी कमियों का सामना करना जरूरी है, उनसे भागना नहीं। हम अक्सर अपनी गलतियों को देखना ही नहीं चाहते।
हाँ, और ये लाइन तो बहुत पावरफुल है। दिमाग बिल्कुल शरीर की तरह चुनौतियों के जवाब में ही सबसे तेजी से बदलता है। अगर आप खुद को अपने आराम क्षेत्र से बाहर नहीं धकेलते हैं, तो आप कभी सुधार नहीं करेंगे। मुश्किल से ही ग्रोथ होती है।
और वो मानसिकता वाली बात, ये मानना कि किसी की क्षमता जन्मजात प्रतिभा से सीमित है, अपनी असल क्षमता तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप मानेंगे ही नहीं कि आप कर सकते हैं, तो आप कोशिश ही क्यों करेंगे? आपकी सोच ही आपकी जेल बन जाती है।
बिल्कुल। तो ये सब गहरी बातें हैं। अब सवाल है कि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में कैसे उतारें। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स।
हाँ, सोचते हैं। जैसे अगर आप नौकरी में हैं, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे 5 साल का तजुर्बा है। सोचिए कि मेरे काम की कोर स्किल्स क्या हैं। मान लीजिए ईमेल अच्छे से लिखना, तो अगली बार ईमेल लिखने के बाद भेजने से पहले 1 मिनट रुककर उसे दोबारा पढ़ें। क्या ये साफ है? क्या टोन सही है? क्या इसमें सारी जरूरी जानकारी है? छोटा सा स्टेप है, पर ये प्रैक्टिस है।
या मीटिंग्स वाला उदाहरण, मीटिंग के बाद 2 मिनट सोचें कि क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था। किसी गलीग से फीडबैक मांग ले, काम को ही लर्निंग लैब बना लें।
स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ चैप्टर को बार बार पढ़ना, जिसे पैसिव रीडिंग कहते हैं, उसकी जगह एक्टिव रिकॉल करें। किताब बंद करके खुद से पूछें, इस चैप्टर में क्या था, मुख्य पॉइंट्स क्या थे। उन्हें अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें।
और रटने की बजाय समझने पर फोकस करें। वो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बनाने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट का नक्शा बनाए दिमाग में, और टीचर से स्पेसिफिक फीडबैक मांगे, मैं कहां सुधार कर सकता हूं।
और अगर कोई शौक है, मान लीजिए पेंटिंग सीख रहे हैं, तो सिर्फ सुंदर लैंडस्केप बनाने के बजाय कभी सिर्फ शेडिंग की प्रैक्टिस करें, या सिर्फ हाथ की एनाटॉमी बनाने की, मुश्किल हिस्सों पर फोकस करें।
हाँ, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो उस मुश्किल वाले पीस को स्लो स्पीड में बार बार सही बजाने की कोशिश करें, खुद को रिकॉर्ड करके सुनें, फीडबैक लें।
और पेरेंट्स और कोच के लिए ये तो बहुत ही जरूरी है, बच्चों की तारीफ करते वक्त उनकी इंटेलिजेंस या टैलेंट के बजाय उनकी कोशिश, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी मेहनत की तारीफ करें। वाह, तुमने इस मुश्किल सवाल को हल करने के लिए ये तरीका लगाया, ये बहुत अच्छा था।
उन्हें सिखाएं कि मुश्किल काम को छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ें, अभ्यास के छोटे लक्ष्य कैसे सेट करें, और जब वो स्ट्रगल करें तो उन्हें हौसला दें कि ये सीखने का हिस्सा है, हार मानना हल नहीं है।
बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है, वो यही है कि महानता या किसी भी चीज में बहुत अच्छा होना, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है, जिसे कोई भी सीख सकता है और अपना सकता है। ये जानना ही बहुत एम्पावरिंग है।
हाँ, और मेरे लिए जो सबसे रिवोल्यूशनरी आइडिया था, वो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस का था। ये सोचना कि एक्सपर्ट दुनिया को ही अलग तरह से देखते हैं, समझते हैं, ये सिर्फ हाथ की सफाई नहीं, दिमाग की बनावट का फर्क है। और ये कि हम सब में वो ताकत है कि हम अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी काबिलियत को बदल सकें, बस सही तरीके से सोच समझकर मेहनत करने की जरूरत है।
बिल्कुल। ये किताब एक तरह से हमें इजाजत देती है कि हम अपनी लिमिट्स पर सवाल उठाएं, और उन्हें पार करने का एक वैज्ञानिक रास्ता भी दिखाती है। याद दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा हैं।
बहुत खूब।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।